अस्सलाम वालेकुम। आज जुमा है, अक्टूबर की 14 तारीख। पाकिस्तान में सुबह शाम के 7, भारत में 7:30, और यहाँ हमारे स्टूडियोज़ की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ खालिद हमीद, खबरों के एक बुलेटिन के साथ। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने रिवायती हरीफ मुल्क को मुज़ाकरात की पेशकश करते हुए कहा है कि बामानी बातचीत के लिए ज़रूरी है कि भारत उन उमूर पर संजीदगी दिखाए जो दोनों ममालिक के दरमियान दूरी का सबब बने हुए हैं। काजिकिस्तान के दारुलहुकूमत अस्ताना में होने वाले एशिया में रवाबित एतमाद साजी के इख्तामात से मुतालिक सरबराही इजलास सीका से खिताब करते हुए शहबाज शरीफ का कहना था कि हकीकत यह है कि आज भारत अपनी अकलियतों, हमसाया मुल्कों, खित्ते और खुद अपने वजूद के लिए एक खतरा बन चुका है। इसके बावजूद हम भारत से खित्ते में अमन, खुशहाली और तरक्की के लिए बातचीत के लिए तैयार हैं। रवां साल अप्रैल में इख्तदार में आने के बाद से पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ खित्ते के मसाइल के हल के लिए बातचीत पर जोर देते आए हैं, ताहम ये पहला मौका है कि उन्होंने देरीना हरीफ मुल्क भारत को बाज़ाब्ता मुज़ाकरात की पेशकश की है। खित्ते के उमूर पर लिखने वाले मारूफ भारतीय सहाफी और काउंसिल फॉर इंडियन फॉरेन पॉलिसी के चेयरमैन डॉक्टर VP वैदक कहते हैं कि शहबाज शरीफ की इस पेशकश को खुश आमदीद किया जाना चाहिए। भारत में पाकिस्तान के सफीर के तौर पर खिदमत अंजाम देने वाले साबिक सिफारतकार अब्दुल बासित कहते हैं कि यह पहली मरतबा नहीं है कि पाकिस्तान ने भारत के साथ मुज़ाकरात की बात की है। अलबत्ता इस मरतबा इस्लामाबाद ने अपनी पहले की पोजीशन में नरमी लाई है, जो कि 1 अगस्त 2005 के भारतीय इकदामात की वापसी से मशरू थी। सीका 6 सरबराही इजलास से खिताब करते हुए उज़्बेकिस्तान के सदर शौकत मिर्जा यूसुफ ने कहा, अफगान हुकाम के साथ हम आहंगी के लिए बैन अलाक़वामी ग्रुप के क्याम की तजवीज़ देते हैं। उन्होंने कहा कि अफगान मसाइल पर वसी इत्तेफाक राय और आलमी सतह पर अमली इकदामात के हुसूल के लिए हम तजवीज़ करते हैं कि एशियाई ममालिक अक़्वामे मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से मुश्तरका तौर पर खिताब करें, ताकि अफगान हुकाम के साथ हम आहंगी के लिए आला सतह के मुज़ाकरातकारों के एक बैन अलाक़वामी ग्रुप का क़याम अमल में लाया जाए और बतदरीज अपने वादों को पूरा किया जाए। ईरान के सदर इब्राहिम रवीसी ने इसी सरबराही इजलास से खिताब करते हुए जोर दिया कि अफगानिस्तान में सियासी मुज़ाकरात के जरिए एक जामे हुकूमत कायम की जाए। रूस के सदर व्लादिमिर पुतिन ने कहा कि अफगानिस्तान में हालात को मामूल पर लाने के लिए CIAC के अरकान के दरमियान मुश्तरका तआवुन की जरूरत है। आलमी मालियाती इदारे के मशरिक वुस्ता और वस्ते एशिया के लिए डायरेक्टर जिहाद आज़र का कहना है कि पाकिस्तान के लिए ऐसे वक्त में जब मुल्क को कोरोना वायरस की आलमी वबा के बाद तबाहकुन सैलाब की वजह से बड़े नुकसानात का सामना है, इदारे ने फंड्स के फौरी इजरा समेत कई लचकदार इकदामात किए हैं। ताहम उन्होंने कर्जों की रीशेड्यूलिंग का बराह रास्त जवाब देने से गुरेज करते हुए कहा है कि जब पाकिस्तान के हुकाम के साथ रिव्यू इजलास होगा और उस दौरान वर्ल्ड बैंक और USAID के पाकिस्तान में सैलाब के सबब होने वाले नुकसानात का दुरुस्त तज़िया भी सामने आ जाएगा, तो IMF अपने नंबर अपडेट करेगी। ये बात उन्होंने वॉशिंगटन में IMF के सालाना इजलास में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वॉइस ऑफ अमेरिका की उर्दू सर्विस के एक सवाल के जवाब में कही। उनका यह भी कहना था कि दुनिया के कई इलाकों में बगैर किसी वाज़े हदफ के दी जाने वाली मुराद या सब्सिडीज ने मईशतों को फायदे के बजाय नुकसान पहुंचाया है। IMF के अहलकार ने यह बात एक ऐसे मौके पर कही जब पाकिस्तानी वजीर खजाना इसहाक डार अमरीका के दौरे पर हैं। उनकी सरबराही में पाकिस्तानी वफ्द IMF के सालाना इजलास में शिरकत के अलावा IMF और वर्ल्ड बैंक के अहलकारों से दोतरफा मुलाकातें भी कर रहा है। पाकिस्तान के वफाकी वजीर दाखिला सनाउल्लाह ने कहा है कि सवात में अमन अमान की सूरत हाल तशवीशनाक जरूर है, लेकिन हालात इतने खराब नहीं कि उन्हें कंट्रोल नहीं किया जा सके। उन्होंने कहा कि सवात समेत सूबे भर में आवाम के जानो माल के तहफ्फुज़ के लिए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से तआवुन करेंगे। چند روز قبل سوات میں اسکول وین پر فائرنگ کے نتیجے میں ڈرائیور ہلاک اور دو طالب علم زخمی ہو گئے تھے۔ اس واقعے کے خلاف ہزاروں افراد نے سوات میں احتجاج کیا تھا۔ پاکستان کی وادی سوات میں اگست کے اوائل میں مبینہ طالبان عسکریت پسندوں کے منظر عام پر آنے اور سرگرمیاں شروع ہونے کے رد عمل میں سوات سمیت خیبر پختونخوا کے علاقوں میں امن ریلیوں اور مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے۔ سوات کے تحصیل چارباغ کے مظاہرے میں وزیراعظم کے مشیر انجینئر امیر مقام اور بنیر کے جلسے میں وزیر اعلیٰ کے معاون خصوصی ریاض خان کی موجودگی میں جماعت اسلامی جمعیت العلماء اسلام فے پشتون تحفظ تحریک پاکستان مسلم لیگ نون پاکستانی تحریک انصاف پاکستان تحریک انصاف وکلا اور کاروباری تجارتی تنظیموں سے منسلک افراد نے واضح طور پر کہا کہ وہ کسی بھی صورت میں طالبان کو نہیں آنے دیں گے اور سیکیورٹی فورسز کے اداروں پر زور دیا کہ وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کر کے ان عسکریت پسندوں کو وہاں سے نکالیں۔ وزیر اعلیٰ کے مشیر برائے اطلاعات بیرسٹر محمد علی سیف کا کہنا تھا کہ کلدم شدت پسند تنظیم کے عسکریت پسندوں کا سوات میں سیکیورٹی فورسز کے ساتھ جھڑپ ایک اتفاقی واقعہ تھا، وہ کسی بھی صورت میں تصادم یا دہشت گردانہ مقاصد کے لیے نہیں آئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ کلدم تنظیم کے ساتھ جنگ بندی کا معاہدہ برقرار ہے اور مستقل مصالحت کے لیے مذاکرات جاری ہیں۔ بھارت میں منی لانڈرنگ کے معاملات پر نظر رکھنے والے حکومت کے ادارے انفورسمنٹ ڈائریکٹریٹ نے سینئر خاتون صحافی رانا ایوب کے خلاف منی لانڈرنگ کے دفعات کے تحت اتر پردیش کی ایک عدالت میں فرد جرم داخل کی ہے۔ ان پر الزام ہے کہ انہوں نے فلاحی کاموں کے نام پر عوام سے غیر قانونی طور پر کروڑوں روپے حاصل کیے تھے، لیکن انہوں نے صرف 29 لاکھ روپے فلاحی کاموں میں استعمال کیے، باقی اخراجات دکھانے کے لیے فرضی بل داخل کیے۔ رانا ایوب نے، جو اس وقت ایک صحافتی پروگرام میں شرکت کی غرض سے امریکہ میں ہیں، کہا کہ یہ کاروائی مجھے نشانہ بنانے اور ہراساں کرنے کی ایک اور کوشش ہے۔ یہ قانون اور مرکزی ایجنسی کا غلط استعمال ہے۔ اس کا مقصد حکومت پر تنقید کرنے سے مجھے روکنا ہے۔ نئی دہلی کے صحافیوں نے ای ڈی کی اس کاروائی پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ پریس کانفرنس نے اس کاروائی پر رد عمل ظاہر کیا۔ پریس کلب آف انڈیا کا بھی کہنا ہے کہ رانا ایوب کے خلاف جو الزامات عائد کیے گئے ہیں، اگر وہ صحیح ہیں تو اور انہوں نے واقعی خلاف قانون کام کیا ہے تو ان کے خلاف ضرور کاروائی ہونی چاہیے، لیکن اگر انتقامی جذبے کے تحت کاروائی کی گئی ہے تو ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ اس معاملے میں حکومت کا موقف یہ ہے کہ وہ اظہار کی آزادی کی حامی ہے اور وہ پریس پر کسی بھی قسم کی پابندی کے خلاف ہے۔ نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر کے تحقیقاتی ادارے اسٹیٹ انویسٹیگیشن ایجنسی یا ایس آئی اے نے مقامی صحافی فہد شاہ اور کالم نویس عبدالعلی فاضلی کے خلاف دہشت گردی کی تعریف کرنے، فیک نیوز یا جعلی خبریں پھیلانے اور قانون اور امن عامہ کے مسائل پیدا کرنے کے لیے عام شہریوں کو اکسانے کے الزامات میں فرد جرم عائد کی ہے۔ اس سے پہلے جمعرات کو ایس آئی اے نے بھارت کے وفاقی پولیس فورس کے ایک اہلکار ذوالفقار علی کھٹانہ کے خلاف پاکستان کے خفیہ ادارے آئی ایس آئی کا ایجنٹ اور کلدم عسکری تنظیموں لشکر طیبہ اور جیش محمد کا اعلی کار ہونے کے الزام میں فرد جرم عائد کی تھی۔ حالیہ برسوں میں یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ سی پی آر ایف کے کسی رکن پر اس طرح کے الزامات کے تحت کاروائی کی گئی ہو۔ اس کے علاوہ بھارت کے زیر انتظام کشمیر کی حکومت نے کرپشن، نااہلی، مشکوک وفاداری اور سماج دشمن سرگرمیوں میں ملوث ہونے کے الزام میں 36 پولیس اہلکاروں کو بھی نوکری سے برطرف کر دیا ہے۔ وارانسی کی ضلع عدالت نے ایک اہم فیصلہ سناتے ہوئے گیان واپی مسجد کے معاملے میں ہندو فریقوں کی اس اپیل کو خارج کر دیا جس میں مسجد کے حوض میں پائے جانے والے مبینہ شیولنگ کی کاربن ڈیٹنگ یا سائنسی تحقیق کرانے کی اجازت طلب کی گئی تھی۔ عدالت نے 22 ستمبر کو یہ عرضی سماعت کے لیے منظور کی تھی اور دیگر فریقوں کو نوٹس جاری کرتے ہوئے کہا تھا کہ اگر کوئی انہیں اعتراض ہے تو وہ عدالت میں جمع کروائیں۔ مسلم فریقوں نے کاربن ڈیٹنگ کی مخالفت کی تھی۔ ہندو فریق کے ایک وکیل کا کہنا ہے کہ وہ اس فیصلے کو आला अदालत में चैलेंज करेंगे, जबकि मुसलमानों के एक मुश्तरका प्लेटफॉर्म ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है कि आज के फैसले ने एक नए मुमकिन तनाजे का दरवाजा बंद कर दिया है। कैम्बोडिया में जुमेरात को कश्ती के एक हादसे में कम अज कम 8 बच्चे हलाक हो गए। ये कश्ती नॉमबिन के जुनूब मशरक में दरियाई मेकोंग में उलट गई। हुकाम का कहना है कि 4 अफराद को बचा लिया गया है, जिनमें 2 बच्चे और अमले के 2 अरकान शामिल हैं। बच्चों की उम्रें 12 से 15 साल के दरमियान थीं। जुमे को पेश आने वाले इस हादसे में कम अज कम 2 तालिबे लापता हैं। रूस नवाज फोर्सेस ने गुजश्ता 3 दिनों में डोनेट्स्क ओब्लास्ट में बाखमुत कस्बे के मरकज की तरफ हिकमत अमली के साथ पेशकदमी की है। बरतानिया के वजारत दिफा ने जुमे को ट्विटर पर यूक्रेन पर रूसी हमले के बारे में पोस्ट की गई इंटेलिजेंस अपडेट में बताया कि दूसरी आर्मी कोर के अमले के अफराद लोहांस के इलाके की रूस नवाज मलेशिया है, जो मुमकिन तौर पर शहर के जनूब में ऑप्टाइन और लोइंग्राड कस्बों में दाखिल हुए हैं। शिमाली कोरिया ने मुख्तसर फासले तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल का तजर्बा किया है। जनूबी कोरिया और जापानी हुकाम ने बताया कि ये मिसाइल जुमे को शिमाली कोरिया के मशरकी साहिल के करीब समंदर में दागा गया। जनूबी कोरिया के ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ के एक सीनियर एहलकार कॉन्ग हो पिल ने कहा कि मुल्क की फौज एक सख्त इंतबाह जारी कर रही है, जिसमें शिमाली कोरिया पर जोर दिया गया है कि वह ऐसे इश्तियाल अंगेज तजर्बात को रोके। जापान के चीफ काबीना सेक्रेटरी हिरोको मात्सुनो ने कहा कि जुनूबी कोरिया की सरहद के करीब लॉन्चिंग और जंगी तैयारे की परवाज ने शिमाली कोरिया के हालिया तजर्बात से पैदा होने वाली कशीदगी को मजीद बढ़ा दिया है। शाम के सरकारी मीडिया ने एक फौजी जरिए के हवाले से बताया है कि जुमेरात को दमिश्क के मुजाफात में एक बस में होने वाले बम धमाके में 18 शामी फौजी हलाक और कम अज कम 27 जख्मी हो गए हैं, जबकि मुल्क शिमाल में लड़ाई में शिद्दत पैदा हो गई है। गुज़श्ता बरसों में ऐसे ही हमलों में जंगजदा मुल्क में हुकूमत के कब्जे के इलाकों में दर्जनों फौजी हलाक और जख्मी हो चुके हैं। गुज़श्ता मार्च में अस्करीत पसंदों ने मरकजी शाम के इलाके पालमीरा के करीब एक फौजी बस पर हमला करके 13 फौजियों को हलाक और 18 को जख्मी कर दिया था। इराकी कानून साजों ने एक साल के तवील सियासी खला खत्म करते हुए एक अहम कदम में नए सदर का इंतखाब किया है। जुमेरात को पार्लियामेंट ने साबिक वजीर अब्दुल लतीफ राशिद को सदर के तौर पर वोट दिया। इस इजलास को उस वक्त खतरा लायक हो गया था जब 9 रॉकेटों ने ग्रीन जोन को हदफ बनाया था। रॉकेट पार्लियामेंट की इमारत के करीब गिरे थे। इराकी सिक्योरिटी हुकाम का कहना है कि हमले में 3 आम शहरियों समेत कम अज कम 5 अफराद जख्मी हुए। और आबोहवा की तब्दीली पर मिस्र में होने वाले सरबराह इजलास में गुफ्तो शुनीद के एक बासर ब्लॉक लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज ग्रुप या LDC के सरबराह ने आबोहवा की तब्दीली से मुतासिर गरीब मुल्कों के लिए तलाफी को एजेंडे पर नुमाया रखने का मुतालबा किया है। कम तरक्की याफ्ता मुल्कों के ग्रुप LDC की चेयरपर्सन मेडलिन डियोफसार्फ ने एसोसिएटेड प्रेस को बताया कि नवंबर में COP 27 के तौर पर मारूफ कॉन्फ्रेंस में आबोहवा की तब्दीली से सबसे ज्यादा खतरे से दो चार मुल्कों की आवाज और जरूरियात को शामिल किया जाना चाहिए और आबोहवा के हवाले से इंसाफ किया जाना चाहिए। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। हमारी वेबसाइट, यूट्यूब और पॉडकास्ट पर यह बुलेटिन आपके लिए पोस्ट कर दिया जाता है। आप अपने बुलेटिन में, हमारे कमेंट्स में हमें हर इस सिलसिला मोहब्बत और दुआओं का इजहार करते हैं, जिसके लिए हम आपके बेहद मशकूर हैं। अपनी इन दुआओं को जारी रखिएगा। न्यूज़ एडिटर बहजत जिलानी के साथ खालिद हमीद को अब इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।